प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 21 सितंबर 2017 है और आज के इस cfeis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पहले से ही मालूम होगा कि आज भी मैं उसी विषय पर बात करने जा रहा हूं जिसकी शुरुआत मैंने कल की थी। और कल हम लोग बात इस बात पर कर रहे थे कि हम किस तरीके से अपने व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाएं, जब भी हम किसी से मिलें तो वह कुछ समय के लिए हमें याद रख सके, हमारा फॉलोअर्स बन सके, हमारी प्रशंसा कर सके, कुल मिलाकर यह कि हमें उससे मिलकर अच्छा लग सके। देखिए, ये बड़ी विचित्र सी बात है, हमें मिलकर अच्छा तभी लगता है जब उस पर हमारा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, उसका अगर हम पर प्रभाव पड़ रहा है तब भी हमें अच्छा लगता है, लेकिन ज्यादा अच्छा लगने की बात तो तब होती है जब हमारा भी उस पर प्रभाव पड़ता है। तो फ्रेंड्स, इसी मुद्दे पर हम लोग बात कर रहे थे और कल मैंने आपको कुछ शब्दों के बारे में बताया था कि हम उनके अंतर को समझ लें कि हैंडसम जिसे हम कहते हैं वो क्या है, अट्रैक्शन क्या है, स्मार्ट क्या है। इससे होता यह है कि हम जब इन बारीक अंतर को समझ लेते हैं सही मायने में, तभी हम अपने विषय पर फोकस्ड हो पाते हैं। जैसे अब उन विषय उन सारी की सारी बातों को हमने समझ लिया है, इनके अंतर को जान लिया है, तो अब जो इफेक्टिव पर्सनालिटी है या पर्सनालिटी की जो इफेक्टिवनेस है उस पर बड़े हम फोकस तरीके से बात कर सकेंगे और आप भी फोकस तरीके से उसे ग्रहण भी कर सकेंगे। अदरवाइज क्या है कि चीजें फिर बिखरने लगती हैं। हम जो कुछ भी जानने की कोशिश कर रहे हैं तो पता लगा कुछ हिस्सा अट्रैक्शन में चला गया, कुछ हिस्सा स्मार्टनेस में चला गया, कुछ हिस्सा हैंडसम में चला गया और हम बात कर रहे हैं उसके इफेक्टिवनेस पर। और सच पूछे तो सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी भी इसी पैटर्न से होनी चाहिए कि जिस मुद्दे पर आप तैयारी कर रहे हैं, जिस टॉपिक पर, उस टॉपिक पर आप कितने फोकस्ड हैं। तो मित्रों, कल जो मैंने बात की थी मुझे विश्वास है कि उस पर आप लोगों ने थोड़ा बहुत विचार भी किया होगा। खैर, अब मैं देखिए एक बड़ी कंट्राडिक्टरी आपको चीज बताने जा रहा हूं। कंट्राडिक्टरी चीज यह है कि मित्रों, हो सकता है कि आप किसी से मिलें, उसे देखें, बातचीत करें, तो हो सकता है कि आपको वह उतना प्रभावी न लगे शुरू में देखते साथ ही। जिसको हम कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, यानी कि फर्स्ट इंप्रेशन में हो सकता है कि वो आपको बहुत बेकार लगे, लेकिन क्या वो लगातार बेकार ही लगता चला जाएगा? ये एक सोचने की बात है। हम बोलचाल में तो कह देते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, और नो डाउट कि ऐसा होता भी है। जिससे हम थोड़ी देर के लिए मिलते हैं तो उसमें तो फर्स्ट इंप्रेशन ही है, बस एक आपको झलक मिल गई और वो झलक जिस तरीके से आपके हमारे दिमाग में दर्ज हो गई वही सब कुछ हो गया, उसे ही हम अंतिम सत्य मान लेते हैं। लेकिन मान लीजिए कि किसी के साथ आपका लंबा इंटरेक्शन हो रहा है, बार बार मिलना हो रहा है, या एक ही बार मिलने में आप लंबे समय तक उसके साथ हैं, तो डेफिनेटली फिर फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन सही नहीं ठहरता है, वो इंप्रेशन चेंज होता रहता है। हो सकता है कि जितना बुरा इंप्रेशन था वो उससे भी ज्यादा बुरा हो जाए आगे चलकर, या यह भी हो सकता था कि पहला इंप्रेशन तो बुरा था लेकिन बाद में वो अच्छे में कन्वर्ट हो गया, या पहला इंप्रेशन अच्छा था लेकिन बाद में पता लगा कि ये तो गलत था और वो बुरा होता चला गया। एनीथिंग मे हैपन, कुछ भी हो सकता है, राइट? तो ये भी हमें अपने दिमाग में रखना चाहिए, हमें ये सार्वजनिक सार्वभौम सत्य नहीं है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। जैसे मैं आपको चलिए उदाहरण देता हूं इसी बात के, और इससे आपको ये भी पता लगेगा कि सच में जो स्मार्टनेस है, जो हैंडसमनेस है और जो पर्सनालिटी की इफेक्टिवनेस है उनमें कैसे अंतर है। और जैसा कि मैंने कहा कि एकदम विरोधाभास भी कभी कभी दिखाई देता है ना? तो शायद इन उदाहरणों से, इन जीवंत व्यक्तित्व से आपको इन बातों का अनुमान हो जाए। मित्रों, इतिहास के मैं दो तीन चार नाम लेना चाहूंगा और ये बिल्कुल अलग अलग मापदंड के व्यक्तित्व हैं। अष्टावक्र की कथा आपने शायद सुनी होगी, जो राजा जनक के दरबार में पहुंचे थे, और अष्टावक्र नाम ही देखिए, अष्ट यानी कि आठ, वक्र यानी कि टेढ़ा, मतलब एक ऐसा शरीर जो आठ जगहों से टेढ़ा है। कल्पना करके देखिए कि जो शरीर आठ जगहों से टेढ़ा होगा उसकी कुरूपता सुंदरता क्या होगी। तो अष्टावक्र ऐसे ही थे। जब वो महाराज जनक के दरबार में पहुंचे, जब महाराजा जनक बिल्कुल दार्शनिक विचारों में मग्न थे, अपने विद्वानों के साथ वो डिस्कस कर रहे थे, वो खुद भी फिलासफर थे आपको मालूम है, तो मित्रों, जैसे ही वो दरबार में पहुंचे तो वहां जितने भी दरबारी थे, जैसे उन्होंने वह अष्टावक्र को देखा, वो देखकर हंस दिए कि ये कौन बेवकूफ आ गया, कौन मूर्ख आ गया, कुरूप व्यक्ति आ गया, कहां से आ गया, जो भी उनके दिमाग में आया हो। यानी कि फर्स्ट इंप्रेशन बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ा, राइट। और शारीरिक रूप से न तो हैंडसम है, न सुंदर है, न स्मार्ट है, न अट्रैक्टिव है, तभी तो हंसे। और ये जो हंसी थी ये व्यंगात्मक हंसी थी। तो फिर अष्टावक्र ने एक वाक्य कहा है, और भी मतलब एक वाक्य नहीं, कई वाक्य कहे होंगे। उसका सार ये है कि राजा दरबार, वो राजा जनक से कहते हैं कि राजा जनक, मैं तो समझता था कि आपके दरबार में जो लोग हैं बड़े विद्वान लोग रहते हैं, लेकिन मैं यहां तो देख रहा हूं कि सब चर्मकार बैठे हुए हैं। सब सन्नाटा छा गया कि ये कैसे क्या कह रहे हैं कि सब चर्मकार बैठे हुए हैं। तो उन्होंने बताया कि इन्होंने मेरे शरीर को देखकर मेरा मूल्यांकन किया, यानी कि चमड़ी को देखा। और चमड़ी का मूल्यांकन करने की क्षमता योग्यता किसमें होती है? चर्मकार में होती है। ये विद्वान तो है ही नहीं, सन्नाटा छा गया। और फिर राजा जनक ने उनको ससम्मान बैठाया, और फिर जो डिस्कशन हुआ है आज अलग से, जनक गीता के नाम से वो प्रसिद्ध है, और वो उस पर तो हमारे जो आज रजनीश जी हुए हैं उन पर उनकी बहुत जबरदस्त व्याख्या लिखी है, जो राजा जनक और अष्टावक्र के बीच में जो फिलोसफिकल बातचीत हुई है वो जनक गीता के नाम से जानी जाती है। सोच करके देखिए, अष्टावक्र गीता भी कुछ लोग उसे कह देते हैं। मित्रों, अब आप देखिए कि फर्स्ट इंप्रेशन क्या था। यहां आपको हैंडसम, सुंदरता और आकर्षण और अट्रैक्टिव, ये सब चीजें एक जगह है, लेकिन इफेक्टिवनेस देखिए। और इफेक्टिवनेस ये है कि आज भी वो किताब पढ़ी जाती है। लोग भगवत गीता को उतना नहीं समझ पाते हैं जितना कि इस गीता को समझ लेते हैं। कम पॉपुलर है, लेकिन जो पढ़ना पसंद करते हैं, जो पढ़ते हैं, फिर इन्हें वो ज्यादा समझ में आती है। जायसी ऐसे ही एक कवि थे मित्रों। जायसी साहित्य के अगर आप स्टूडेंट रहे हैं तो मलिक मोहम्मद जायसी इनका पूरा नाम है, उत्तर प्रदेश के थे, और इन्होंने पद्मावत नामक ग्रंथ लिखा है, पद्मावत, और जिस पर अभी हमारे संजय लीला भंसाली फिल्म बना रहे हैं। पद्मावत, पद्मावती उसकी करेक्टर है। पद्मावती के अद्भुत सौंदर्य का उन्होंने चित्रण किया है, बहुत ही सुंदर दिखाया है पद्मावती को, है ना। अब आप देखिए कि जो जायसी थे, जायसी देखने में बहुत ही कुरूप से थे, कहा जाते बहुत ही सांवले, नाटे, मतलब उनको देखने से जरा भी कोई उनसे प्रभावित नहीं हो सकता। लेकिन जब उनका पद्मावत सामने आया तो देख करके हिंदुस्तान दंग रह गया। आज भी वो पढ़ाई जाती है, वो ग्रंथ पढ़ाया जाता है, उस पर फिल्म बन रही है, उनका प्रभाव देखिए। मित्रों, गांधी जी के बारे में आप जानते हैं, गांधी जी की आप तस्वीरें देखिए, चाहे वो बचपन की देखें, चाहे वो जब फिर टीनेज में थे उस समय की देखें, फिर जब वो थोड़े से यंग होकर के थोड़े से अधेड़ उम्र में आए उस समय की देखें, या वृद्धावस्था की देखें, आप देखने के लिहाज से तो उन्हें कहीं प्रभावशाली नहीं मानेंगे, कहीं प्रभावशाली नहीं मानेंगे। लेकिन उनका क्या प्रभाव था, मतलब पूरी दुनिया पर उनका प्रभाव था कि गांधी बोलते थे और पूरी दुनिया के कान खड़े हो जाते थे। गांधी फुसफुसाते थे और उसकी आवाज इतनी ऊंची होती थी कि पूरी दुनिया सुनती थी। ये उनका प्रभाव था, देखने में कुछ नहीं। चलिए, राजनेता की बात हो गई। नेहरू और सुभाष को देखिए, नेहरू और सुभाष, जवाहरलाल नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस, देखने में दोनों बहुत यंग, स्मार्ट, यहां तक कि विवेकानंद यंग है, स्मार्ट है, हैंडसम है, जो भी आप कहना चाहें, जो शब्द इस्तेमाल करना चाहें, इन सबके लिए कर सकते हैं। लेकिन प्रभावशालिता भी उनकी उतनी ही थी। मतलब ऐसा नहीं है कि जो ये सब होगा, हैंडसम होगा, ये सब होगा, वो फिर प्रभावी नहीं हो सकता। मैं इसीलिए ये नाम स्पेशली ले रहा हूं। सुनील दत्त की मैं बात बताऊंगा मित्र। सुनील दत्त जिसे तुम्हें मिला जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, अद्भुत व्यक्ति थे, देखने में बहुत प्रभावशाली, बहुत आकर्षक। लेकिन आप देखिए कि वो जो फिल्म इंडस्ट्री है, वो फिल्म इंडस्ट्री के अलग तरीके के अभिनेता हैं। भले ही वो अपने सदी के महानायक न हो, उनको दिलीप कुमार जी जैसा बहुत बड़ा एक्टर न माना जाता हो, कि जिन्होंने एक एक्टिंग की स्कूल शुरू कर दी हो, ये सारी चीजें भले ही न मानी जाती हो, लेकिन उनका जो प्रभाव रहा है फिल्म इंडस्ट्री पर और जनचेतना पर, हमारी सामाजिक जीवन पर, वो बहुत अद्भुत है। वो बहुत ही अद्भुत किस्म के व्यक्ति थे, बहुत अद्भुत व्यक्ति थे सुनील दत्त जी। प्रभाव देखिए, अब वो हैंडसम भी है, प्रभावी भी है। राजीव गांधी जी, उनसे भी मुझे मिलने का सौभाग्य मिला। ये सब बहुत ही हैंडसम थे इनफैक्ट देखने में, लेकिन प्रभावी भी थे। तो दोनों में इस तरह से विरोध मत मानिएगा। मैंने पहले जो विरोध की बात कही थी वो यही किया था कि ऐसा नहीं कि जो हैंडसम नहीं है वो प्रभावी नहीं हो सकता। फिल्म इंडस्ट्री में ले लीजिए, चलिए मैं फिल्म इंडस्ट्री की ही बात कर रहा हूं, आप मैं दो अलग अलग जेंडर की बात कर रहा हूं, ओम पुरी जी को ले लीजिए और स्मिता पाटिल जी को ले लीजिए, देखने में दोनों ही बिलो एवरेज है। बल्कि ओम पुरी जी के बारे में तो यही कहा जाता था जब वो आए, तो भैया ये एक्टर एक्टिंग कर कैसे सकेंगे, एक्टर बनेंगे कैसे, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में तो आप जानते हैं कि सुंदरता और हैंडसम होना ये सब एक प्राथमिक शर्त मानी जाती है, और ओम पुरी जी इन सब के बिल्कुल विपरीत थे। लेकिन ओम पुरी जी ने एक नया स्कूल की स्थापना कर दी, यानी कि एक्टिंग में एक नई परंपरा की शुरुआत कर दी, और पूरे हिंदुस्तान को इस बात का संदेश दे दिया कि जो अभिनय है उसका संबंध आपके चेहरे मोहरे हैंडसमनेस से नहीं है, उसका संबंध सीधा सीधा आपकी अभिनय क्षमता से है कि जो आपको रोल दिया गया है आप उसे कितनी जीवंतता के साथ निभा पाते हैं। और मित्रों यही करके दिखाया स्मिता पाटिल जी ने, देखने में कहते बिल्कुल सांवली सामान्य सी लड़की, इस बात को लेकर के उनके अंदर कुंठा भी थी, उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि सच पूछे तो मैं एक्टिंग में आई ही इसलिए, उन्होंने जो कहीं मैंने पढ़ा था कि आई ही इसलिए कि मैं अपनी इस कुंठा से उबर सकूं, और उबर करके उन्होंने दिखाया, जो उन्होंने एक्टिंग की गजब की एक्टिंग की, और श्याम बेनेगल जैसे फिल्मकारों ने डायरेक्टर ने जिन्होंने स्मिता पाटिल जी को भी रोल अभिनय कराया, जिन्होंने आपके शबाना जी से भी अभिनय कराया, एक उन्होंने बहुत अच्छी तुलना की थी, उन्होंने कहा था कि शबाना जी बहुत महान कलाकार है नो डाउट, और स्मिता पाटिल भी बहुत महान कलाकार है, दोनों में कोई संदेह नहीं, लेकिन उन्होंने एक बड़ी बारीक अंतर बताई थी, उन्होंने कहा था कि स्मिता पाटिल दिल से रोल करती हैं और शबाना जी दिमाग से रोल करती हैं, और दोनों अद्भुत है, दोनों महान है। अब आप देखें कि स्मिता पाटिल फिल्म इंडस्ट्री में रही, महिला थी, सुंदर नहीं थी, इसके बाद भी उनका जबरदस्त प्रभाव भारतीय अभिनय की दुनिया में रहा है। तो मित्रों कुछ व्यक्तित्व को लेकर मैंने बातें की हैं ताकि आपकी जो दृष्टि है व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाने की वो फैल सके। मैं जिंदगी की सच्चाइयों की बात कर रहा हूं, मैं सिद्धांतों की बात नहीं कर रहा हूं, राइट? तो आप भी इन सब पर विचार कीजिएगा। अब वो प्रभावशाली कैसे बनाए, क्या तत्व होते हैं, उन पर अब हम लोग कल आखिरी बार इस विषय पर बातें करेंगे। तो मित्रों अब इसी के साथ ही मैं आज के लाइफ मैनेजमेंट को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार।